मैं ज्यादा जोर नहीं डालूंगा, उसने नरमी से कहा। तुम लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रीना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं यहीं हॉल में लेट जाऊंगा, वेदांत ने शांत स्वर में कहा। तुम बीमार हो और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, बस इतना ही। उसकी आवाज में अब कोई मांग नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी, बस साथ रहने की एक सच्ची कोशिश थी। रीना कुछ पल तक उसे देखती रही। ये वही आदमी था जिसने उसे तोड़ा था, और वही आदमी अब उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत देर से ये सब समझे हो वेदांत। वेदांत हल्के से मुस्कुराया। देर से सही, लेकिन सच्चे दिल से। रीना लेटने के लिए कमरे की तरफ बढ़ी। पीछे हॉल में वेदांत चुपचाप लेट गया, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी जिद के, सिर्फ इस भरोसे के साथ कि आज उसने पहली बार रीना के दर्द को सच में समझा है। आर्यन ने जय की कस्टडी का केस फाइल कर दिया था। बाहर से देखने वालों को ये बस एक कानूनी चाल लगती थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। केस फाइल करने की असली वजह ये दिखाना था कि सानवी और आर्यन एक ही घर में रह रहे हैं, हालांकि दोनों ने तय किया था कि वे किसी रिश्ते की तरह नहीं बल्कि दो दोस्तों की तरह साथ रहेंगे। कमरे अलग थे, जिंदगी अलग, पर दीवारें इतनी पतली थीं कि खामोशियां भी टकरा कर लौट आती थीं। विक्रांत और जैसिका इस पूरे मामले को दूर से देख नहीं रहे थे, वे हर पल उस पर नजर रखे हुए थे। विक्रांत को सबसे ज्यादा बेचैनी इस बात की थी कि उसे आर्यन की कोई भी कमजोरी नहीं मिल रही थी, ना कोई गलत आदत, ना कोई संदिग्ध हरकत, ना कोई ऐसा पल जिसे कोर्ट में उनके हक में इस्तेमाल किया जा सके। हर मीटिंग के बाद विक्रांत की आवाज और सख्त हो जाती थी। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो जैसिका से चाहता। कहीं ना कहीं तो दरार होगी, बस हमें वो दरार चाहिए। लेकिन आर्यन हर बार शांत, संतुलित और साफ निकल आता था, और यही बात विक्रांत को सबसे ज्यादा डराती थी, क्योंकि अगर केस आर्यन के पास चला गया तो खेल पूरी तरह पलट सकता था। दूसरी तरफ सानवी और कैमल अपनी ही जंग लड़ रही थीं। उनका रेस्टोरेंट, जो पिछले महीने तक गुलजार रहता था, इस महीने कुछ अजीब सा सूना था। टेबल खाली नहीं रहती थी, मगर वही रौनक नहीं थी। वही हंसी, वही शोर, वही गर्मजोशी, सब कुछ जैसे आधा अधूरा लग रहा था। सानवी खुद को ही समझ नहीं पा रही थी। उसका मन बार बार भटक रहा था, कभी आर्यन की तरफ, कभी आने वाले दिनों की चिंता में। काम करते हुए भी वो अक्सर कहीं और खो जाती थी, और कैमल ये सब देख रही था चुपचाप। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी। बैंक की इंस्टॉलमेंट की तारीख नजदीक आ रही थी, और इस बार रकम भारी लग रही थी। ऊपर से स्टाफ की सैलरी, जो किसी भी हाल में रोकी नहीं जा सकती थी। कैमल रात को हिसाब की फाइल खोलती, नंबर देखती, फिर बंद कर देती। नंबर वही रहते, लेकिन हौसला हर बार थोड़ा कम हो जाता। एक रात रेस्टोरेंट बंद होने के बाद सानवी ने धीरे से कहा, अगर इस महीने भी ऐसा ही रहा तो। उसने बात पूरी नहीं की, मगर सवाल हवा में लटक गया। कैमल ने गहरी सांस ली। तो भी हम हार नहीं मानेंगे, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भरोसे से ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ था। इंदर पहले ही जान चुका था कि आर्यन और सानवी की शादी नकली है। हैरानी की बात यह थी कि उसने अब तक ये बात किसी से शेयर नहीं की थी, न गुस्से में, न सहानुभूति में, न किसी चाल के तहत। वो इस सच को अपने भीतर रखे हुए घूम रहा था, जैसे जेब में रखा कोई भारी सिक्का जो हर कदम पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता हो। उसी घर में कृति रह रही थी। शुरुआत में वो बस एक मजबूरी थी, लेकिन वक्त के साथ वो इंदर की जिंदगी का एक सहज हिस्सा बन गई। दोनों के बीच कोई बनावटी अपनापन नहीं था, ना ही जरूरत से ज्यादा सवाल जवाब, बस एक शांत सी दोस्ती जिसमें बोलना कम और समझना ज्यादा था। सुबह जब इंदर टहलने के लिए निकलता तो कृति अक्सर उसके साथ चल देती। पार्क तक का रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन उन कुछ मिनटों में दोनों की बातचीत अजीब तरह से सुकून देती थी। कभी मौसम पर बात, कभी पुराने शहरों की यादें, और कभी बस चलती हवा की आवाज। उन दोनों के बीच अभी तक सिर्फ दोस्ती थी, और शायद यही वजह थी कि ये रिश्ता इतना हल्का और सुरक्षित लगता था। कृति की एक खास आदत थी, वो दूसरों की जिंदगी में ज्यादा दखल नहीं देती थी। कोई पूछे तो जवाब, कोई ना पूछे तो चुप्पी। वो इंदर के घर में रहते हुए भी इंदर से कहीं दूर रहती थी। दीवारों के भीतर रहकर भी उसने अपने लिए एक अलग ही दुनिया बचा रखी थी। शायद इसी वजह से इंदर को उससे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। उसे न स्पेस चाहिए था, न कंट्रोल, बस सह अस्तित्व। दूसरी तरफ सानवी अंदर ही अंदर सब समझ चुकी थी। उसे पता था कि हालात आसान नहीं है, और उसे अपनी बहन की चिंता भी खाई जा रही थी। उसने इंदर से बात की थी बिना आरोप, बिना शक के, बस इतना कहा था कि कृति का ख्याल रखा जाए। सानवी ने खुद भी कई बार कोशिश की थी कि कृति घर वापस आ जाए। कभी प्यार से, कभी समझा बुझाकर और कभी अपनी मजबूरी बताकर। लेकिन कृति हर बार शांति से मना कर देती थी, ना गुस्से में, ना जिद में, बस एक स्थिर फैसले के साथ। वो जानती थी कि लौटना अभी उसके लिए सही नहीं है। कभी कभी दूर रहना ही सबसे बड़ा ख्याल होता है, खुद के लिए भी और अपनों के लिए भी। इंदर के मन में आर्यन के लिए गुस्सा धीरे धीरे नहीं बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था। ऊपर से वो कुछ नहीं कहता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक चुभन सी जमती जा रही थी। इस आग में घी डालने का काम जैसिका बखूबी कर रही थी। जैसिका बार बार एक ही बात दोहराती, आर्यन अपनी मनमानी करता है, वो किसी की नहीं सुनता, हर फैसला खुद ही ले लेता है। इंदर पहले ही खुद को इस पोस्ट के लायक साबित करने के दबाव में था। जब से वो नियमित रूप से ऑफिस आने लगा था, उसे लगने लगा था कि हर मीटिंग, हर फैसला उसकी परीक्षा है। लेकिन बार बार ऐसा होता कि कई मामलों में आर्यन उसे मना कर देता था। असल सच्चाई ये थी कि इंदर के पास अनुभव नहीं था, और आर्यन ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता था जिससे कंपनी की साख या काम को नुकसान पहुंचे। वो जोखिम समझता था, नंबर पढ़ता था और आगे का असर देखता था, जबकि इंदर सिर्फ अधिकार देख रहा था। उस दिन माहौल कुछ ज्यादा ही तना हुआ था। कंपनी का माल लोड होना था, एक बड़ा ऑर्डर जिस पर काफी कुछ निर्भर करता था। इंदर ने एक फैसला सुनाया, लेकिन आर्यन का आकलन कुछ और कह रहा था। आर्यन ने फाइल बंद करते हुए साफ कहा, मैंने कहा ना इंदर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने ये किया तो हमें सीधा नुकसान होगा। इंदर की भौहें तन गईं। क्या जरूरी है कि हर बार तुम ही सही हो? उसकी आवाज में अब संयम नहीं था, सिर्फ चुनौती थी। आर्यन शांत था लेकिन सख्त। बिल्कुल, क्योंकि मैं सब समझता हूं, उसने बिना ऊंचा स्वर उठाया कहा, और मैं किसी भी कीमत पर कंपनी के साथ समझौता नहीं करूंगा। यही बात इंदर को अंदर तक चुभ गई। उसका गुस्सा, जो अब तक शब्द ढूंढ रहा था, अचानक रास्ता पा गया। सब समझते हो इंदर आसा, एक कड़वी तीखी हंसी। तुम इंसान भी समझते हो आर्यन। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंदर बोलता चला गया, अब रुकना उसके बस में नहीं था। तुमने जय का बहाना बनाकर सानवी से नकली शादी कर ली ताकि कंपनी पर पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहे। शब्द मुंह से निकल चुके थे। एक पल के लिए खुद इंदर भी चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में आग थी। मगर याद रखना, उसने उंगली उठाकर कहा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इतना कहकर इंदर गुस्से में वहां से चला गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और कमरे में सिर्फ एक इंसान खड़ा रह गया, आर्यन। आर्यन हिला नहीं। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना घबराहट, बस एक गहरी ठंडी समझ। उसे अब यकीन हो चुका था, इंदर सारी सच्चाई जान चुका है, नकली शादी का राज। असल में इंदर की समस्या कभी कंपनी नहीं रही। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सा फैसला पास हुआ, किसका ऑर्डर रुका या किससे मुनाफा कम हुआ। ये सब तो बस ऐसे मुद्दे थे जिनके पीछे वो अपना गुस्सा छिपा सकता था। उसका असली गुस्सा आर्यन पर था, और वजह सानवी, वही जिसे इंद्र चुपचाप बिना हिम्मत किए बिना नाम दिए चाहता रहा था।
इंद्र ने कभी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की।